ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद जुबैर से समाचार सुनिए। भारत और चिली ने आज नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग के लिए समझौता किया। दोनों देशों ने एंटार्क्टिका सहयोग पर आशा पत्र का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट के साथ दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि चिली लैटिन अमेरिका में भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र और साझेदार देश है। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान आने वाले दशकों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई पहलों की पहचान की गई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत कई क्षेत्रों में चिली के साथ अनुभव साझा करने के लिए तैयार है।
आज हमने एक पारस्परिक लाभकारी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू करने के लिए अपनी टीम्स को निर्देश दिए हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में साझेदारी को बल दिया जाएगा, रेजिलिएंट सप्लाई और वैल्यू चेन्स को स्थापित करने के लिए काम किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में एक दूसरे की क्षमताओं को जोड़कर फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए सहयोग किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे, स्पेस तथा अन्य क्षेत्रों में भारत अपना सकारात्मक अनुभव चिली के साथ साझा करने के लिए तैयार है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चिली को अंटार्कटिका के प्रवेश द्वार के रूप में देखता है। इस अवसर पर चिली के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए चिली की प्रतिबद्धता को दोहराया। संसद ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित कर दिया है। आज राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद को एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। इसे त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। यह संस्थान सहकारी क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में सरकार ने सहकारी क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश में सहकारिता की भावना को बढ़ावा देगा। राज्यसभा ने विमान उपकरणों में हितों की सुरक्षा विधेयक 2025 पारित कर दिया है। विधेयक मोबाइल उपकरणों पर अंतर्राष्ट्रीय हितों पर समझौते को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास है। ये केंद्र सरकार को समझौते और प्रोटोकॉल के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार भी प्रदान करता है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन बाजार है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में क्रांति ला दी है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सदन में विधेयक पर चर्चा के लिए 8 घंटे आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विधेयक पर सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण विधेयक का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं बल्कि न्याय देना है। उन्होंने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। विधेयक को पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद इसे आगे विचार के लिए भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को सौंपा गया था। इस बीच भाजपा, कांग्रेस और तेलुगुदेशम पार्टी ने लोकसभा में अपने सभी सांसदों को कल उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। गुजरात में आज बनासकांठा जिले के दीसा में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 18 लोगों की मौत हो गई है। इमारत ढहने के बाद मलबे में कम से कम 23 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू किया। 5 घायलों को बचाया गया है। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में 13वें मैच में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया है। पंजाब किंग्स की ओर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 52 रन और प्रभ सिमरन सिंह ने 69 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।